भाग चार, पहला शीर्षक रत्ना। रत्ना नामक एक बाल विधवा कमलम्मा की पुत्री है। कमलम्मा रंगम्मा की बहन है। रत्ना एक गुणी एवं निडर नव युवती है। नदी के किनारे जाने या आने के लिए उसे किसी बड़ी स्त्री एवं रक्षक की कभी आवश्यकता नहीं पड़ती। वह अकेले ही मैले कपड़े नदी किनारे के पत्थरों पर ले जाती, उन्हें गीला करती एवं निचोड़ती तथा उनकी गठरी बांधकर शीघ्रता से घर लौट आती। अगला शीर्षक रत्ना एक शिक्षित महिला। रत्ना एक पढ़ी लिखी एवं उन्नतिशील विचार धारणाओं वाली नवयुवती है। यद्यपि वह विधवा है, लेकिन वह विधवा की तरह पारंपरिक पोशाक नहीं पहनती। वह चूड़ियाँ एवं रंगीन साड़ियाँ विधवाओं की तरह सफ़ेद धोती नहीं पहनती है। माथे पर कुमकुम की बिंदी लगाती है तथा अपने बालों को उन महिलाओं की तरह संवारती है जो बिना शादी के ही पुरुषों से सहवास करती है। रत्ना वार्तालाप में निडर एवं चतुर भी है एवं वार्तालाप में आसानी से दूसरों को परास्त कर सकती है। उसके अपारंपरिक तौर तरीकों, विधवा होने पर भी विधवाओं की तरह नहीं रहना के कारण उसकी आलोचना की जाती है। रत्ना आकर्षक एवं सुंदर है। जब मूर्ति रत्ना की ओर ध्यान देता है तो रत्ना की सुंदरता का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। यदि कोई रत्ना से पूछता है कि उसे सुहागिनों की तरह कपड़े क्यों पहने हुए हैं, वह जवाब देती है कि उसे मेरे तौर तरीकों से क्या मतलब। रत्ना की माता भी रत्ना को डांटती एवं कहती कि उसे बड़ा अफसोस है कि उसने उसे पढ़ने के लिए भेजा। दूसरी महिलाएं रत्ना की ओर थूकती एवं उसके घर की बर्बादी की कामना करती। रत्ना के दिल में मूर्ति के प्रति प्रेम की भावना है। उसे गांधी आंदोलन में भी रुचि है। वह मूर्ति के लिए प्रेरणा एवं सहायता का स्रोत है। अगला शीर्षक हरि कथावाचक की गिरफ्तारी। जब मूर्ति हरि कथावाचक की गिरफ्तारी के बारे में सुनता है तो वह तुरंत गांधी आंदोलन में शामिल होने का निश्चय करता है। मूर्ति गांधी जी की बातों से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और उनका सच्चा भक्त बन जाता है। हरि कथा वाचक की गिरफ्तारी के बाद ही मूर्ति शहर चला जाता है। रत्ना भी गांधी आंदोलन में पूरी रुचि लेती है एवं मूर्ति के लिए प्रेरणा स्रोत सिद्ध होती है। जब रत्ना हरि कथा वाचक की गिरफ्तारी के विषय में सुनती है तो वह हरि कथा वाचक के स्थान पर कथा कहना शुरू कर देती है। अगला शीर्षक गांधी आंदोलन की तैयारी। जब मूर्ति शहर से लौटकर आता है तो वह अपने साथ साथ गांधी आंदोलन की प्रचार सामग्री सूत तथा चरखे भी लाता है। रंगम्मा कांग्रेस के आंदोलन में गहन रुचि लेती है। अपने मित्रों के साथ मूर्ति लोगों को निःशुल्क चरखे वितरित करता है तथा उन्हें सूत काटने के लाभों के बारे में बताता है। वह महिलाओं को समझाता है, बहनों, कांग्रेस सभी को निःशुल्क चरखे वितरित कर रही है, क्या तुम भी सूत काटोगी बहनों? तुम जानती हो कि घर की सफाई, बर्तन साफ करने आदि के पश्चात दोपहर के बाद तुम्हारे पास करने को कुछ भी नहीं रहता है, अर्थात तुम खाली रहती हो। यदि तुम प्रतिदिन 1 घंटा सूत काटती हो तो तुम्हें तुम्हारे मनपसंद रंग का चोली का कपड़ा अथवा इससे अधिक कपड़ा प्राप्त हो सकता है। प्रत्येक माह तुम्हें किसी भी रंग का एक चोली का कपड़ा अथवा बड़ा बड़ा कपड़ा मिल सकेगा तथा प्रत्येक 6 माह के पश्चात एक साड़ी। पहले माह में आप लोगों को निःशुल्क सूत मिलेगा। उसी समय एक महिला मूर्ति से पूछती है, मेरे बच्चे, गांव में तो अनेकों अन्य बुनकर भी हैं। मूर्ति तुरंत उत्तर देता है, हाँ मेरी बहन, लेकिन वह बुनकर विदेशी सूत खरीदते हैं एवं विदेशी सूत खरीदने से हमारा धन समुद्र पार विदेशों में चला जाता है। हमारा सोना धन हमारे ही देश में होना चाहिए तथा हमारा सूत हमारे ही देश में रहना चाहिए। मूर्ति उस स्त्री को यह भी बताता है कि महात्मा गांधी की सलाह है कि प्रत्येक स्त्री एवं पुरुष को चरखा चलाना चाहिए यदि वह चरखा चलाने में समर्थ है। यदि उसे धन की आवश्यकता नहीं है तो हर प्रकार से धन कमा सकता है एवं गरीबों को धन अथवा कपड़ा प्रदान कर सकता है। मूर्ति उस स्त्री को पुनः बताता है कि अनेकों भारतीय बुनकरों को विदेशी सूत खरीदना पड़ता है। विदेशी मिलों के मालिकों की एजेंट लोग चावल तथा रुई को कुछ अधिक मूल्य देकर खरीद लेते हैं। पॉलिश किया हुआ चावल एवं सूत गांव वापस आते हैं, जिन्हें ग्राम निवासियों को ऊंची कीमत में खरीदना पड़ता है। अधिकांशतः लाभ विदेशियों एवं उनके एजेंटों के पास चला जाता है। नंजम्मा मूर्ति से पूछती है, लेकिन मेरे बच्चे मुझे बताओ, क्या महात्मा गांधी भी चरखा चलाते हैं? बहनों, महात्मा गांधी जी प्रत्येक सुबह पूजा के पश्चात 2 घंटे तक चरखा चलाते हैं। वह कहते हैं कि चरखा चलाना भी उतना ही पवित्र कार्य है जितना पूजा करना। मूर्ति का जवाब था। अगला शीर्षक, मूर्ति की शादी के लिए प्रस्ताव। एक के पश्चात एक मूर्ति को शादी के लिए अनेकों आकर्षक प्रस्ताव आते हैं, किंतु वह शादी करने से इनकार कर देता है। फिर भी शादी का एक ऐसा ही प्रस्ताव था जिसको मूर्ति की माता नरसम्मा भुला नहीं पाती है। मैडूर के रहने वाले वेंकट नारायण, जो कॉफी बागान का स्वामी था, के पास से यह प्रस्ताव आया था। नरसम्मा एक शानदार विवाहोत्सव एवं शाही बारात का स्वप्न देखती है। इसके विपरीत वेंकम्मा को विश्वास है कि वह कॉफी बागान का मालिक कभी भी ऐसे नवयुवक को अपनी बेटी देना पसंद नहीं करेगा जिसके शिक्षा पूरी न हुई हो एवं डिग्री न प्राप्त कर सका हो। वह मूर्ति की माता के पास जाती है एवं धमकी देती है कि यदि यह शादी हो गई तो यह कार्य ब्राह्मणों की जाति को भ्रष्ट करने के समान होगा एवं शादी के समारोह के अवसर पर वह एकत्र हुए लोगों से झगड़ा करेगी। वेंकम्मा की इस ईर्ष्या का कारण यह था कि मूर्ति ने उसकी एक बेटी के साथ शादी करने से इनकार कर दिया था।